ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर, एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जिसे हम सबने सुना है, जिस पर शायद हमारे अपने विचार भी हैं, लेकिन जिसे लेकर कन्फ्यूजन भी उतना ही है।
और वो शब्द है नारीवाद, मतलब फेमिनिज्म। ये एक ऐसा विषय है जो आप देखें तो खबरों से लेकर हमारे घर की बातचीत तक में शामिल है।
सही बात है। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे पास मार्गरेट वॉल्टर्स की एक बहुत ही अच्छी किताब है, फेमिनिज्म: अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, ये किताब एक गाइड की तरह है जो हमें नारीवाद के सफर पर ले जाती है।
बिल्कुल। और ये समझना आज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि नारीवाद को अक्सर पुरुषों के खिलाफ या सिर्फ महिलाओं का मुद्दा मान लिया जाता है, जबकि असल में ये बराबरी की, इंसाफ की और मानवाधिकारों की बात करता है। तो चलिए आज इस शब्द से जुड़ी गलतफहमियों की परतें हटाते हैं।
देखते हैं कि इसकी कहानी असल में क्या है।
तो चर्चा में उतरने से पहले लेखक को जानना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि लेखक का नजरिया ही कहानी को एक अलग मोड़ देता है। मार्गरेट वॉल्टर्स वो कोई आम इतिहासकार नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जानी मानी ब्रिटिश अकादमिक हैं और एक नारीवादी साहित्यिक आलोचक भी।
अच्छा।
और यही बात, मतलब, इस किताब को बहुत खास बनाती है। वो सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं देती, उनका काम ये देखना है कि साहित्य में, कला में, हमारी संस्कृति में औरत और मर्द होने का मतलब कैसे गढ़ा जाता है, कैसे बदलता है।
तो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाती हैं कि उन विचारों को कहानियों और तस्वीरों के जरिए समाज तक कैसे पहुंचाया गया।
बिल्कुल, उन्होंने द न्यूड मेल जैसी एक बहुत दिलचस्प किताब भी लिखी है।
ये नजरिया इस जटिल विषय को समझने के लिए एकदम सही है, क्योंकि हम सब भी तो कहानियों से ही दुनिया को समझते हैं।
सही बात है।
तो ये किताब असल में हमें बताती क्या है? अगर एक लाइन में समझना हो तो इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा आइडिया ये है कि नारीवाद कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, कोई एक फिक्स विचारधारा नहीं है।
अच्छा, मतलब कोई एक नियम किताब नहीं है कि बस यही नारीवाद है।
बिल्कुल नहीं। ये तो सदियों से चले आ रहे कई आंदोलनों, अलग अलग विचारों और जोरदार बहसों का एक संगम है।
इसे एक नदी की तरह सोच सकते हैं, जिसमें समय समय पर नई नई धाराएं आकर मिलती गईं और उसका रूप बदलता गया।
ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
और किताब सबसे पहले इसी धारणा को तोड़ती है कि नारीवाद पुरुषों के खिलाफ कोई जंग है। वॉल्टर साफ करती हैं कि ये पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की के खिलाफ एक संघर्ष है।
और पितृसत्ता का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं, बल्कि वो पूरा सामाजिक ढांचा है।
हाँ, वो पूरा सिस्टम जहां ताकत और अधिकार पुरुषों के पास ज्यादा केंद्रित होते हैं, और ये ढांचा पुरुषों पर भी दबाव बनाता है।
तो इस कहानी को बताने के लिए वॉल्टर्स हमें एक टाइम मशीन में बिठाकर एक सफर पर ले जाती हैं। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक यात्रा पर। ये सफर 18वीं सदी के यूरोप से शुरू होता है, फिर हम पहली लहर पर आते हैं जहां महिलाएं वोट के अधिकार के लिए सड़कों पर उतरीं।
उसके बाद दूसरी लहर, जिसने घर के अंदर की राजनीति पर सवाल उठाए।
और आखिर में हम आज के ग्लोटल नारीवाद तक पहुंचते हैं, जो दुनिया भर के महिलाओं की अलग अलग आवाजों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये तो हुई एक झलक, लेकिन असल में जमीन पर बदलाव कब और कैसे दिखना शुरू हुआ? मतलब विचारों की जमीन किसने तैयार की?
बिल्कुल सही सवाल। वॉल्टर्स हमें 18वीं सदी के प्रबोधन काल में ले जाती हैं, वो दौर जब तर्क, विज्ञान और विवेक की बातें हो रही थीं।
हाँ,
यहीं पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट नाम की एक लेखिका सामने आती है, जिन्हें कई लोग नारीवाद की माँ भी कहते हैं। 1792 में उनकी किताब आई, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन।
और उनका तर्क क्या था?
उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि तर्क और विवेक इंसान का सबसे बड़ा गुण है। अगर ऐसा है तो आप महिलाओं को शिक्षा से दूर रखकर उन्हें इंसान होने के सबसे बड़े गुण से ही वंचित कर रहे हैं।
वाह, मतलब सिस्टम के ही लॉजिक से सिस्टम को चुनौती दे दी।
बिल्कुल, ये उस जमाने में एक धमाके जैसा था।
इसके बाद ये विचार जमीनी आंदोलन में कैसे बदला?
वो हुआ 19वीं सदी में, जिसे हम पहली लहर कहते हैं। अमेरिका में 1848 का सेनेका फॉल्स कन्वेंशन एक मील का पत्थर था। यहाँ पहली बार महिलाओं ने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग की, और इस दौर का सबसे बड़ा लक्ष्य था मताधिकार,
यानी वोट देने का अधिकार। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ वोट के लिए ही लड़ाई थी।
नहीं, किताब समझाती है कि वोट को एक चाबी की तरह देखा गया, एक ऐसा औजार जिससे संपत्ति, शिक्षा और तलाक जैसे दूसरे कानूनी अधिकारों के दरवाजे खुल सकते थे।
अच्छा, तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी।
जी।
और फिर आता है 1960 और 70s का दशक, दूसरी लहर। यहाँ तो जैसे सब कुछ बदल गया। लड़ाई सिर्फ कानूनी अधिकारों की नहीं रही, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था। यहाँ दो किताबों का जिक्र बहुत जरूरी है। पहली फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन द बोवार की द सेकेंड सेक्स।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
उनका एक वाक्य अमर हो गया, कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है।
इसका मतलब क्या है? सुनने में थोड़ा गहरा लगता है।
इसका मतलब है कि नारित्व या फेमिनिनिटी, यानी लड़कियों को शांत रहना चाहिए, उन्हें सजना संवरना चाहिए, घर संभालना चाहिए, ये सब बातें प्राकृतिक नहीं है।
ये समाज हमें सिखाता है, हमारे अंदर भरता है।
बिल्कुल, हम एक इंसान के तौर पर पैदा होते हैं, समाज हमें औरत या मर्द के खांचे में ढालता है।
ये तो बहुत ही गहरा विचार है। और दूसरी किताब कौन सी थी?
वो थी अमेरिका में बेटी फ्रीडन की द फेमिनिन मिस्टिक। उसने उन घरेलू महिलाओं की चुप्पी को आवाज दी जिनके पास सब कुछ था, अच्छा घर, पति, बच्चे,
लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली और बेचैन महसूस करती थी।
हाँ, फ्रीडन ने इसे नाम दिया एक ऐसी समस्या जिसका कोई नाम नहीं था। इस किताब को पढ़कर लाखों महिलाओं को लगा कि वे अकेली नहीं हैं।
और यहीं से वो मशहूर नारा आया, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल।
हाँ,
ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है।
हाँ,
पर इसका असली मतलब क्या था?
इसका मतलब था कि घर, परिवार, यौनिकता और घरेलू हिंसा, जिन्हें अब तक निजी मामले मानकर दरवाजे के पीछे रखा जाता था,
हाँ,
वो असल में राजनीतिक हैं।
बिल्कुल,
क्योंकि ये समस्याएं किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सत्ता के एकतरफा झुकाव की वजह से पैदा होती हैं।
हाँ,
इस एक नारे ने नारीवाद के दायरे को संसद से उठाकर हमारी रसोई और बेडरूम तक पहुंचा दिया।
लेकिन जितना ये नारा शक्तिशाली था उतना ही शायद विवादित भी रहा होगा।
हाँ, वो बताती हैं कि ये एक जरूरी बहस थी। आंदोलन जैसे जैसे फैला उसके अंदर से ही नई आवाजें उठने लगीं। अश्वेत नारीवादियों, समाजवादी नारीवादियों और समलैंगिक नारीवादियों ने मुख्यधारा के आंदोलन को चुनौती दी।
उन्होंने कहा कि एक पढ़ी लिखी अमीर श्वेत महिला का अनुभव सारी महिलाओं का अनुभव नहीं हो सकता।
सही।
और यहीं से इंटरसेक्शनैलिटी का विचार आया जो आज बहुत सुनने को मिलता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं?
इंटरसेक्शनैलिटी को एक चौराहे की तरह समझिए।
ठीक है,
मान लीजिए एक सड़क है लिंग भेद की और दूसरी सड़क है जातिवाद की। एक सवर्ण महिला शायद सिर्फ लिंग भेद वाली सड़क पर चल रही है, लेकिन एक दलित महिला उस चौराहे के ठीक बीच में खड़ी है। उसे दोनों तरफ से आ रहे ट्रैफिक का खतरा है। उसका अनुभव, उसका संघर्ष सिर्फ एक सड़क पर चलने वाली महिला जैसा नहीं हो सकता।
वाह, ये उदाहरण तो कमाल का है, इसने सबको साफ कर दिया।
इंटरसेक्शनैलिटी यही समझाता है कि उत्पीड़न के सारे सिस्टम, लिंग भेद, नस्लवाद, जातिवाद, वर्ग भेद, ये सब आपस में जुड़े हैं।
इसके बाद तीसरी लहर आई 1990 के दशक में। वो दूसरी लहर से कैसे अलग थी?
तीसरी लहर की पीढ़ी दूसरी लहर की बेटियों की थी। उन्होंने पॉप कल्चर, संगीत और फैशन को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जहां दूसरी लहर ने मेकअप को पितृसत्ता का प्रतीक माना, वहीं तीसरी लहर ने कहा कि ये हमारी अपनी पसंद का इजहार भी हो सकता है।
तो इसमें व्यक्तिगत पहचान और विविधता पर बहुत जोर था।
हाँ, और आखिर में किताब हमें ग्लोबल फेमिनिज्म तक लाती है, जो बहुत जरूरी हिस्सा है। ये इस बात पर जोर देता है कि पश्चिम में जो नारीवाद विकसित हुआ उसे पूरी दुनिया पर थोपा नहीं जा सकता,
क्योंकि हर देश, हर संस्कृति में महिलाओं के मुद्दे और उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं।
बिल्कुल, ये स्थानीय संघर्षों का सम्मान करने और एक दूसरे से सीखने की बात करता है।
तो इस पूरे सफर से कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहली बात यह है कि नारीवाद कोई मंजिल नहीं है, एक सफर है।
हाँ, ये लगातार खुद को बदल रहा है, अपनी गलतियों से सीख रहा है और ज्यादा समावेशी बन रहा है।
दूसरा संदेश जो मुझे लगता है वो है व्यक्तिगत और राजनीतिक का जुड़ाव। ये समझना कि हमारे निजी जीवन की समस्याएं सिर्फ हमारी अपनी दिक्कतें नहीं हैं, बल्कि एक बड़े सामाजिक ढांचा का नतीजा है, ये सोच आपको ताकत देती है।
बिल्कुल। और तीसरा, इंटरसेक्शनैलिटी की अहमियत, खासकर भारत जैसे देश में जहां एक महिला का अनुभव सिर्फ उसके लिंग से नहीं बल्कि उसकी जाति, धर्म, वर्ग, इन सब चीजों से तय होता है।
इन सच्चाइयों को समझे बिना कोई भी आंदोलन अधूरा है।
एक और बात जो किताब बार बार दिखाती है वो है प्रतिक्रिया, यानी बैकलैश। जब भी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, समाज में उसका कड़ा विरोध हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि बराबरी के लिए हासिल अधिकार कभी स्थायी नहीं होते,
उनके लिए लगातार सतर्क रहना पड़ता है।
हाँ,
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे सिमोन द बोवार का वो कथन,
कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है।
हाँ, ये एक लाइन आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिन्हें लड़कों वाली या लड़कियों वाली आदतें कहते हैं वो कितनी बनाई हुई हैं।
बिल्कुल। और वो दूसरा नारा व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। ये हमें अपनी निजी परेशानियों को एक बड़े सामाजिक नज़रिए से देखने की हिम्मत देता है। जब कोई महिला घरेलू हिंसा का सामना करती है तो ये सिर्फ उसके पति की नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था की समस्या है जो ऐसी हिंसा को होने देती है।
सही बात है। ये सोच शर्म और अपराध बोध को कम करती है। एक और विचार जो अश्वेत नारीवादी आलोचना से उभरा, उसका सार कुछ ऐसा है। सारी महिलाएं श्वेत हैं, सारे अश्वेत पुरुष हैं, लेकिन हम में से कुछ बहादुर हैं।
ये लाइन उन लोगों की अदृश्यता को इतनी खूबसूरती से सामने लाती हैं जो एक से ज्यादा शोषित पहचानों के साथ जीते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि हमें उन आवाजों को सबसे पहले सुनना चाहिए जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि इन सारे भारी भरकम विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम?
यही तो सबसे जरूरी सवाल है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये हमें अपने घरों और रिश्तों में सवाल पूछने की भाषा देता है। ये पूछने की कि घर के सारे काम या बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान पर क्यों है?
हाँ, और ये सोच दफ्तर तक भी जाती है। ये हमें उन छोटी छोटी चीजों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें माइक्रो एग्रेशन कहते हैं। जैसे मीटिंग में किसी महिला के आइडिया को नजरअंदाज कर देना और फिर वही आइडिया किसी पुरुष के मुंह से सुनकर उसकी तारीफ करना।
या वेतन में अंतर। ये विचार हमें पेड पेरेंटल लीव जैसी नीतियों की वकालत करने के लिए तर्क देते हैं, ये समझाते हुए कि ये कोई रियायत नहीं बल्कि एक बराबरी वाले समाज की जरूरत है।
बिल्कुल। और मीडिया का इस्तेमाल तो है ही। जब हम कोई फिल्म या विज्ञापन देखते हैं तो हम ज्यादा जागरूक होकर देख पाते हैं कि किरदारों को कैसे दिखाया जा रहा है। क्या विज्ञापनों में आज भी कपड़े धोने का काम सिर्फ महिलाएं ही कर रहे हैं? हम इन घिसी पिटी छवियों को पहचानकर उन्हें चुनौती दे सकते हैं।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही वो ये है कि नारीवाद का इतिहास जानना आज की आज़ादी को समझने के लिए कितना ज़रूरी है। हम आज जिन अधिकारों को बहुत सामान्य मानकर चलते हैं, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, पढ़ने का या अपनी मर्जी से काम करने का,
उनके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष छिपा है।
हाँ, ये एहसास हमें उन अधिकारों की ज्यादा कदर करना सिखाता है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस आंदोलन की असली ताकत उसकी अंदरूनी बहसों और आत्म आलोचना में है। जब हाशिए पर मौजूद आवाजों ने मुख्य धारा को चुनौती दी, तभी यह आंदोलन ज्यादा सच्चा, समावेशी और मजबूत बना।
ये किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
हाँ, कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, ये आज भी हमारे आसपास अलग अलग रूपों में जारी है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।